पृष्ठ संख्या 38। लिंकिंग अड्डे का इस प्रकार से अफीम व्यापार में योगदान मांचू सरकार के लिए चिंता का विषय बन गया और वे इस व्यापार को संकुचित अथवा नियंत्रित करने में असमर्थ हो गए। चीनी सरकार की असफलता में चीनी अफसरों तथा उनके अन्य सहयोगियों का भी बड़ा हाथ था। ये अपने व्यक्तिगत लाभ के कारण तस्करी को सुगम बना रहे थे। लिंगतिंग के बंदरगाह से विदेशी चीनी, चाय, रेशम तथा दूसरी वस्तुएं काफ़ी सस्ते दामों पर खरीद लेते थे, क्योंकि वहां उन्हें कुआंगचोउ बंदरगाह के कर नहीं चुकाने पड़ते थे। लिंगतिंग में बढ़ते हुए अफीम व्यापार ने दोनों देशों के बीच तनाव को और अधिक बढ़ाया। कुआंगचोउ प्रशासन अपना प्रभुत्व तथा नियंत्रण खो बैठा था। इससे अनुमान लगाया जा सकता है कि अंग्रेजों को अब पैर जमाने के क्षेत्र की परम आवश्यकता नहीं थी। अंग्रेजों ने अफीम व्यापार तथा नाविक प्रभाव से लिंगतिंग को अपने कब्जे में किए हुए था। उपरोक्त तथ्यों के आधार पर थानचुंग इस निष्कर्ष पर पहुंचे हैं कि अंग्रेजों ने न तो पैर जमाने के क्षेत्र को खोजा था और न ही चीन देश को व्यापार के लिए खोले जाने के प्रयासों और न ही चीन देश को व्यापार के लिए खोले जाने के प्रयासों ने तनाव को इतना बढ़ाया कि इस कारण चीनियों और अंग्रेजों के बीच युद्ध हुआ। चीन तथा ब्रिटिश संबंधों में तनाव और क्षोभ का एक कारण समय समय पर उठने वाले न्यायिक विवाद थे। ब्रिटिश व्यापारियों को उन कानूनों का पालन करना पड़ता था जिनके लिए उनके मन में कोई सम्मान न था। यह एक विडंबना थी कि एक ओर अंग्रेज इन कानूनों का अपमान करते थे और दूसरी ओर वे व्यापार को निर्बाध तरीके से चलाने के लिए इनका पालन करते थे। चीनियों ने व्यापार के प्रति अंग्रेजों की निर्बलता का लाभ उठाते हुए अंग्रेजों को दंड दिए। 1784 ईस्वी में लेडी ह्यूज नामक अंग्रेजी जहाज से हुई गोलाबारी ने वामपोआ यानी हुआंगफू के स्थान पर दो चीनियों की मौत के घाट उतार दिया। बहुत आग्रह के पश्चात गोलाबारी करने वाले को कुआंगचोउ सरकार ने फांसी दे दी। 1807 ईस्वी में वामपोआ के स्थान पर हुए दंगों में एक चीनी मारा गया था। चीनी सरकार के दबाव के पश्चात केवल एक नाविक पर जुर्माना लगाया गया। 1810 ईस्वी में एक चीनी की मौत के घाट उतार दिया गया। इसके लिए रॉयल शारोलेट के एक नाविक को दोषी पाया गया। इस पर तनाव और वैमनस्य बढ़ा और अंत में मामला बंद कर दिया गया। 1821 ईस्वी में टोपाज जहाज के नाविकों ने दो चीनियों को मार दिया, अनेकों को घायल कर दिया तथा चीनी संपत्ति को भी हानि पहुंचाई। परंतु नाविक किसी भी प्रकार का दंड भुगतने के लिए तैयार नहीं थे। युद्ध की नौबत दिखाई देने लगी। अंत में मांचू शासन ने दोषी व्यक्तियों को छोड़ दिया। इस प्रकार न्यायिक विवादों ने चीनी अंग्रेजी संबंधों में काफी तनाव और क्षोभ पैदा किया। थान चुंग के कथनानुसार इन सभी तनावों के होते हुए भी दोनों के बीच 30 वर्षों तक शांतिपूर्ण और बाधा रहित व्यापार चलता रहा। अंग्रेज व्यापारियों ने कैंटन व्यापार का एक भी मौका नहीं खोया। दोनों पक्षों के बीच समझौता हो जाने के कारण युद्ध की नौबत नहीं आई। इस प्रकार चीनी ब्रिटिश न्यायिक विभिन्नताएं 1840 ईस्वी के युद्ध के लिए उत्तरदायी नहीं थी। पृष्ठ संख्या 39। युद्ध का एक अन्य कारण चीनियों के पुरातन तरीके के अनुसार सभी विदेशी शक्तियों को करदात्री राज्य के रूप में समझना था। जॉन किंग फेयरबैंक का कथन है कि चीनी सरकार ने लॉर्ड एम हर्स्ट जैसों की करदात्री दूतों ट्रिब्यूटरी एम्बेसडर्स के रूप में स्वीकार किया था तथा राजकीय अभिलेखों में ब्रिटेन का उल्लेख करदात्री राज्य के रूप में किया गया था। इसके साथ जुड़ी हुई है काउटाऊ की परंपरागत प्रणाली। फेयरबैंक इस रीति को चीन अंग्रेज संबंधों को वैमनस्यपूर्ण बनाने में एक महत्वपूर्ण कारण बताते हैं। काउटाऊ की प्रथा के अंतर्गत सभी अफसर शासक के समक्ष घुटने टेक कर प्रणाम करते थे। यह एक ऐसी रीति थी जिसका पालन करने से मैकार्टनी और एमहर्स्ट ने इनकार कर दिया, क्योंकि इसे वे अपना अपमान समझते थे। इस दृष्टिकोण से दोनों ओर गलत फहमियाँ पैदा हुई। मांचू सम्राट दूतों के व्यवहार से रुष्ट हो गए। थान चुंग ने अपने तथ्यों के द्वारा छिंग सरकार की विदेशियों के प्रति नीति को सही बताया। विदेशी शक्ति को करदात्री शक्ति के रूप में स्वीकार करने से उसका अंतर्राष्ट्रीय अस्तित्व तो कम नहीं हो जाता था, इसके अतिरिक्त काउटाऊ शताब्दियों से चली आने वाली एक ऐसी प्रथा थी जिसके द्वारा सम्राट के प्रति बाह्य सम्मान प्रदर्शित किया जाता था। यह पालन करने वाले व्यक्ति के अपमान की सूचक नहीं थी, परंतु थान के द्वारा दिए गए सभी तथ्यों के होते हुए भी वास्तविक तौर पर काउटाऊ तथा करदात्री राज्यों की समस्याओं ने चीन तथा ब्रिटेन के बीच वैमनस्य तथा तनाव को और अधिक बढ़ाया। अन्य विषय इस तथ्य की पुष्टि करते हैं कि एक दूसरे के विषय में दोनों राष्ट्रों की कल्पना एवं विचार अति भिन्न थे। एक ओर घमंड से चूर अंग्रेज चिंग सरकार से समानता की बात कर रहे थे और दूसरी ओर चीनी अपनी सभ्यता को सर्वोच्च तथा गैर चीनियों को बर्बर मानते थे। अंग्रेज उस अवसर की ताक में थे जबकि वे चीनियों की इस मिथ्या धारणा का भंडाफोड़ कर सकते। उनके अपने देश में समानता के लिए संवैधानिक संघर्ष चल रहा था, इस कारण वे ऐसे सम्राट को सहन नहीं कर सके जो अपने आप को स्वर्गपुत्र सन ऑफ हेवन कहता था। अंग्रेजों को चीनियों का समाज भी पसंद नहीं था जहां व्यापारी वर्ग को हीन दृष्टि से देखा जाता था। पृष्ठ संख्या 40। इस प्रकार उपरोक्त कारणों से दोनों राष्ट्रों के बीच संबंध शत्रुतापूर्वक हो गए तथा आपस की खींचातानी काफी बढ़ी, परंतु फिर भी इन सभी कारणों के फलस्वरूप उत्पन्न तनाव दोनों देशों को युद्ध के कगार तक नहीं पहुंचा सका। चीन और ब्रिटेन के बीच युद्ध का सबसे महत्वपूर्ण तथा तत्कालीन कारण अफीम से संबंधित प्रश्न था। कार्ल मार्क्स के समान थानचुंग भी केवल इसे ही 1840 ईस्वी के युद्ध का कारण मानते हैं। इनकी यह धारणा है कि पाश्चात्य विद्वान अफीम के कारण को इसलिए महत्व नहीं देना चाहते थे क्योंकि वे इस बात की पूर्ण अवहेलना करना चाहते हैं कि अफीम ने चीनियों को बहुत व्यापक और गहन हानि पहुंचाई। अफीम के प्रयोग और बढ़ते हुए व्यापार ने चीन देश तथा इसकी जनता को भौतिक तथा मानसिक रूप से ध्वस्त कर दिया। छिंग सरकार के लिए यह आवश्यक हो गया था कि या तो वे अफीम के आयात को बंद करवा दें, अन्यथा इसे नियंत्रित करने के लिए कोई निश्चित कदम उठाएं। शताब्दियों से चीन में अफीम का प्रयोग केवल औषधिक रूप में होता रहा है, परंतु 17वीं शताब्दी में कुछ चीनी अफीम पीने लगे। धीरे धीरे एक व्यापक जनसंख्या इस व्यसन की चपेट में आ गई। अंग्रेजों ने भी इस स्थिति से लाभ उठाकर चीन में अफीम की अधिक मात्रा पहुंचाने की ठानी। 1810 ईस्वी तक अंग्रेज बड़ी मात्रा में चाय, रेशम तथा अन्य वस्तुएं अपने देश को चीन से आयात करते थे। इसके बदले में चीन को निर्यात की मात्रा बहुत ही कम थी। इस एक तरफा व्यापार को अधिक संतुलित बनाने के लिए, ताकि अंग्रेजों को चीन से निर्यात के लिए 90% चांदी और सोना ही आयात न करना पड़े, अफीम का प्रयोग किया गया। 1820 ईस्वी तक व्यापार की स्थिति में नाटकीय परिवर्तन आने लगा जब चीन में अफीम का आयात बढ़ने लगा। यह अफीम भारत के मालवा और बंगाल क्षेत्र में उत्पादित होकर चीन पहुंचती थी। अंग्रेजों का अफीम व्यापार बड़े घुमावदार तरीके से होता था। इसे त्रिकोणीय व्यापार प्रणाली का नाम दिया जाता है। भारत में उगने वाली अफीम का संपूर्ण एकाधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी के हाथ में था। तथापि अफीम के आयात पर चीन में सरकारी प्रतिबंध लगा होने के कारण ईस्ट इंडिया कंपनी चीन में अफीम के आयात से सीधे सीधे नहीं जुड़ना चाहती थी। उसे चीन के साथ कुल व्यापार पर बुरा असर पड़ने का खतरा था। चीन में अफीम पहुंचाने का कार्य कंपनी के लाइसेंस प्राप्त निजी व्यापारियों को सौंपा गया। चीनी और विदेशी तस्कर लिंगतिंग द्वीप पर अफीम के माल को पैदा करते थे तथा अफीम व्यापारी फिर इन्हें देश के आंतरिक क्षेत्रों में वितरित करने का प्रबंध करते थे। अफीम का बढ़ता हुआ व्यापार एक बड़े वर्ग की समृद्धि का कारण बना। इससे ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापारी और कंपनी प्रशासन भारी आर्थिक लाभ उठाते थे तथा इस धन का प्रयोग भारत में अंग्रेजों के साम्राज्य प्रसार के लिए किया गया। चीनी तस्कर सीमा शुल्क अधिकारियों को प्रत्येक बक्से को अनदेखा करने तथा चीन में प्रवेश के लिए 80 तायल की राशि प्रदान करते थे। इसके अतिरिक्त इस व्यापार से नाविकों, कुलियों, संपन्न बैंकों तथा अफीम खानों के मालिकों ने खूब कमाई की। अफीम की बढ़ती हुई तस्करी से चीन में अफीम के व्यसन की मात्रा भी बहुत बढ़ गई। थानचुंग ने निम्नलिखित आंकड़ों के द्वारा यह सिद्ध करने की चेष्टा की है कि यह समस्या घातक हो गई थी। 1795 ईस्वी से 1800 ईस्वी तक 2000 अफीम के बक्स लाए गए और व्यसन से प्रभावित व्यक्तियों की संख्या 1,71,000 थी। 1821 से 1830 ईस्वी के बीच 11,400 पेटियां पहुंचाई, 12,61,000 व्यक्ति अफीम व्यसन के शिकार थे। 1831 ईस्वी से 1840 ईस्वी के बीच 34,300 पेटियां आई और अफीम का नशा करने की संख्या 1831 ईस्वी से 1840 ईस्वी के बीच 34,000 पेटियां आई और अफीम का नशा करने की संख्या 20,85,200 तक पहुंच गई। भारतीय अफीम का नशा करने वाले व्यक्तियों की संख्या 1820 ईस्वी में 0.33% थी तथा 1830 ईस्वी में यह 0.7% तक पहुंच गई। यह स्थिति चिंताजनक थी। फेयरबैंक के अनुसार अफीम के व्यापार की वृद्धि का एक कारण चीनियों में अफीम की निरंतर बढ़ती हुई मांग थी। अफीम के व्यसन का कोई अंत नहीं हो सकता था क्योंकि नशे का शिकार व्यक्ति इसे पीना नहीं छोड़ सकता, चाहे उसके परिवार को आम आवश्यकता की वस्तु से ही वंचित होना पड़े। नशीली दवाओं की मांग एवं उपलब्धि के लिए एक अलग ही नियम कार्य करता है।